सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिनेणमिं वेयणमहाहियारम् विविहियारम् परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह जो 12वीं पुस्तक चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वारा अपना चल रहा है और हम पृष्ठ संख्या 65 पर आ गए। 65 अब यहां से 64 पद वाला महादंडक कहने जा रहे हैं। हाँ, पहले हमने उत्कृष्ट महादंडक देखा था, अब ये जघन्य महादंडक देखेंगे। हाँ? जीरोक्स रहेगी, अभी इनका पुस्तक ले लेंगे। एतो जहन्नो 64 पदियो महादंडो कायवो भवदि। पहले हमने उत्कृष्ट में देखे ना, सभी प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग की अपेक्षा अल्प बहुत्व देखा था। अब जघन्य भाग की अपेक्षा, यानी मिनिमम कितना होता है कौन कौन सी प्रकृतियों में, उसकी बात करेंगे। तो आगे 64 पद वाला जघन्य महादंडक करने योग्य है। करने योग्य ने वो बताएंगे, हमको जानने योग्य है। पूर्वोक्त जघन्य अल्प बहुत्व से सूचित, ये अभी जो हमने पढ़ा था वो जघन्य अल्प बहुत्व था, वहां तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं था, परंतु 4 नंबर की जो हमने गाथा पढ़ी थी पृष्ठ संख्या 62 पर और उसका अर्थ देखा था, तो वहां जो हमने उत्तरोत्तर अनंत गुणी है ऐसा वो सूत्र में कहा था, उस गाथा में कहा था, तो उसका अर्थ होता है जघन्य अनुभाग की अपेक्षा वो सारे प्रकृतियों के उन्होंने क्रम से बता दिए थे, उनका क्रम बताया था। अब ये जो क्रम बताया है उस जघन्य अल्प बहुत्व के आधार से सूचित 64 पद वाले अल्प बहुत्व को कहते हैं। उन्होंने तो जितनी प्रकृति आई उसमें 64 नंबर लगाए लिखता है, क्योंकि हमने जब देखा था तो 52 ऐसे कुछ हुए थे। अब यहां से शुरू होता है। सव मंदाणुभागम लोभ संजलनम, संज्वलन लोभ सबसे मंद अनुभाग से युक्त है। मैं पूछती हूँ, हमने तो कषाय के अनुभाग देखे थे, उत्कृष्ट अनुभाग, तो संज्वलनों में किसको लिया था? संज्वलन लोभ को ही पहले नंबर पर लिया था, सबसे पहले, उससे भी पहले अनंतानुबंधी लोभ, उसके बाद माया, फिर क्रोध और फिर मान, और अभी यहाँ लोभ को मिनिमम में लेते हैं। हाँ, लास्ट विच्छित्ति होती, इतना ही कारण नहीं है, वो सूक्ष्म कृष्टिकरण जो है वो होता है ना, इसमें लोभ में होता है, और वो अंतिम उदय यानी दसवें गुण स्थान में भी उसका अनुसमय अपवर्तन घात होता रहता है, प्रति समय अनंत गुणा घटते 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 अंतिम समय में वो रह जाता है, इसलिए लोभ को लिया, संज्वलन लोभ को मिनिमम पॉसिबल। देखो, संज्वलन लोभ सबसे मंद अनुभाग से युक्त है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय संबंधी बंध का यहाँ ग्रहण किया है, बंध की अपेक्षा भी ले लेंगे तो वहां का बंध जो है मिनिमम है उसका। शंका, सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म कृष्टि स्वरूप लोभ का ग्रहण क्यों नहीं किया जाता है? तो कहते हैं, नहीं, क्योंकि बंध के अधिकार में सत्व का ग्रहण करना नहीं बन सकता। बंध की अगर अपेक्षा लगाएंगे तो उसकी अपेक्षा से अगर देखेंगे तो नवे गुण स्थान के अंत समय वाला बंध लेना उसमें। वेदना में केवल सत्व का ही कथन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वह बंध और सत्व दोनों का ही प्ररूपक है। ये 64 पद वाले जघन्य व उत्कृष्ट अल्प बहुत्व बंध का आश्रय करके ही अवस्थित है। ये बात महत्व की है, क्योंकि कहां कौन सी अपेक्षा से बात करते हैं। सत्ता की अपेक्षा से हम कहेंगे तो दसवें गुण स्थान के अंत में बताएंगे, अब यहां बंध की अपेक्षा बता रहे हैं। उससे माया संज्वलन ऊपर पढ़ना रह गया। अच्छा, शंका भी रहेगी। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यह महाबंध के सूत्र के उपदेश से जाना जाता है। माया संज्वलन अनंत गुणम, उससे माया संज्वलन अनंत गुणा है। अभी हम अल्प से अधिक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जघन्यों की बात चल रही है। पहले उत्कृष्टों की बात थी, तो उत्कृष्टों में नंबर लगाया था, टॉप मोस्ट से हमने शुरू किया था। अब जघन्य में, इसलिए जघन्य में जघन्य कौन है उसको पहले नंबर पर रखा है। अभी इसका कारण, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय से नीचे अंतर्मूर्त उतर कर स्थित माया कषाय के अनुभाग बंध का यहां ग्रहण किया है। ये अनिवृत्तिकरण के अंतर्मूर्त नीचे क्यों आए? हाँ, माया बंध काल जो है उस वहां तक माया का बंध है, जिसको माया वेदक काल कहते हैं, उसका अंतिम समय। देखो नवे गुण स्थान में क्या होता है, उसके अलग अलग भाग ये ना। प्रथम भाग में वेद और चारों कषाय जो है, उदय भी है और चारों का बंध भी है। कौन से वेद का बंध है? हाँ, पक्का? उदय तीनों का है और बंध तो नपुसक वेद के बंध की विच्छित्ति पहले में हुई, स्त्री वेद के बंध की विच्छित्ति दूसरे में हुई, उसके बाद तो पुरुष वेद ही बन रहा है, तो बंध की अपेक्षा लगाना है ना। उदय तो तीनों का हो सकता है, तो वहां पुरुष वेद का उदय यानी उसका पहले उदय मिट जाता है और बंध भी वहीं पर मिट जाता है, तीनों में से किसी वेद का उदय हो, अभी हम स्थूल रूप से सामान्य रूप से कहेंगे, तो उसका उदय भी मिट जाता है और बंध भी मिट जाता है, तो पुरुष वेद का बंध मिट गया। तो उसके बाद यानी वहां तो चार कषायों का बंध हो रहा है, वेद के साथ चार कषाय भी बन रही ना। उसके बाद क्रोध का वेदक काल कहने में आता है, यानी क्रोध का उदय है। उदय तो चारों का भी हो सकता है, फिर भी उसका नाम है क्रोध वेदक काल, क्योंकि वहां क्रोध मान मायालोभ चारों का बंध होता है। जब अंतर्मूर्त उसका समाप्त होता है तब हम उसको कहेंगे मान वेदक काल। अभी यहां उदय किसका हो सकता है? मान माया लोभ में से तीनों का ही उदय हो सकता है, और मान का बंध इसी काल के अंत तक होगा। पहले जब क्रोध का वेदक काल या उदय काल कहते तभी क्रोध मान माया लोभ चारों बनते थे, एक अंतर्मूर्त के बाद मान माया लोभ बंधेंगे और एक अंतर्मूर्त काल के बाद माया और लोभ दोनों ही बंधेंगे और अंतिम अंतर्मूर्त में अकेला लोभ का ही बंध होगा नौवे गुण स्थान में। इसलिए यहां क्या कहा कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय से एक अंतर्मूर्त नीचे उतर कर, लिखा ना यहां पर नीचे, वहां पर स्थित माया कषाय के अनुभाग बंध का यहां ग्रहण किया, यानी माया जहां बनती है उसका अंतिम समय ऐसा लेना। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय संबंधी अनुभाग की अपेक्षा उसका अनुभाग बंध की अपेक्षा उसका धी हुआ है वो द्वि करना, उसका द्विचरम संबंधी अनुभाग बंध अनंत गुणा है। ये बंध की बात चल रही है, अनंत एक एक समय में अनंत वा भाग वहां होगा बंध की अपेक्षा। क्या कहते हैं? अंतिम समय में कौन सा कषाय बन रहा है? अकेला लोभ। हाँ नहीं, वो तो वो वहाँ वहाँ वो आपको एक रूल बता रहे अंत। नहीं नहीं, यहाँ क्या कहते हैं, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय संबंधी। अभी वो माया को अभी जरा अलग रखो, आपको रीजनिंग बता रहे हैं। अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में कौन से कषाय का बंध होता है? लोभ का। तो अंतिम समय में जितका जितना अनुभाग बनता है, लोभ का ही ले लो अभी, तो उसके द्विचरम समय में लोभ का ही बंध हो रहा था, उसका अनुभाग कितना होगा? तो अंतिम समय से अनंत गुणा, पहले आए ना अनंत गुणा, ये बात समझ में आई? अभी यहाँ माया को मत ले लो बीच में, ये लोभ के अंतिम समय में जितना बंध होता है अनुभाग का, एक समय पहले अनंत गुणा होता है। अब कहते हैं उससे त्रिचरम समय संबंधी अनुभाग बंध अनंत गुणा है। इस प्रकार सर्वत्र अनिवृत्तिकरण काल के भीतर अनुभाग की वृद्धि देखे जाने से उक्त कथन का परिज्ञान होता है। तो हम अंतिम समय से कितना नीचे उतर कर आए? एक अंतर्मूर्त। तो वहां पर क्या हो रहा है? माया भी बन रही है और लोभ भी बन रहा है। परंतु लोभ तो आगे तक जाएंगे, तो इसलिए लोभ के मिनिमम को तो हमने देख लिया महादंडक के पहले में। अब उस लोभ जितना बनता था अंतिम समय में, उससे एक अंतर्मूर्त पहले जो बंध होगा वो कितना है? वो असंख्यात बार अनंत गुणा करना उसको, इतना अनंत गुणा ज्यादा है, इसलिए माया का वहां पर ज्यादा बताया। वहां दोनों बन रहे हैं, परंतु हमने लोभ को तो पहले ले लिया है, उसका मिनिमम, लोभ का मिनिमम पॉसिबल तो आगे है। देखो ये अनिवृत्तिकरण के अंत से हम आते ही नीचे, यहां लोभ का बंध था एक समय पहले जो है द्विचरम समय में, वहां अनंत गुणा था लोभ का अनुभाग बंध, उसके एक समय और पहले अनंत गुणा और अनंत गुणा और अनंत गुणा। अब ऐसे अंतर्मूर्त काल पहले हम आ गए जहां माया का अंतिम समय का बंध हो सकता था, यानी अभी यहां से आगे माया और लोभ दोनों ही बंध हो रहे हैं। तो यहां लोभ का जितना बंध था उससे ये माया का जघन्य बंध यहां पर है ना, वो अनंत गुणा है। यहाँ लोभ बन रहे उसकी कौन नया पड़े, मतलब तो नहीं, सरीखा मत करो, वो पूर्व से अनंत गुणा इतना कहो, अपनी अपनी प्रकृति की अपेक्षा भी ले लेना उसमें, क्योंकि हमने देखा था अनुवृत्तिकरण में तो ये अनुभाग की अपेक्षा लोभ में बहुत घटता चला जाता है ज्यादा। वो अश्वकरण की बात की थी ना मैंने आपको, ये लोभ से माया के कंपेयर करना, मिनिमम लोभ से मिनिमम माया अनंत गुणा है, जघन्य से जघन्य की बात चल रही है। माया संजलनम हो गया ना, कोध अभी मान ऊपर, मान 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 66 में 121 नंबर, मान संजलनम अनंत गुणम, उससे मान संज्वलन अनंत गुणा है। देखो लोभ, फिर माया, फिर मान और फिर क्रोध, क्योंकि ये अनिवृत्तिकरण में ये हम देख रहे हैं, क्योंकि वहां उसका सूक्ष्मकरण हुआ है और उसका पहले जो पहले लोभ को लेते थे उत्कृष्ट में, पहले लोभ को, फिर माया को, फिर क्रोध को और फिर मान को, ये जो पूर्व अवस्था में यानी अनिवृत्तिकरण के पहले तक ये पोजिशन होती है हर जगह, अभी उसका उलट पुलट हो गया, वो क्रम बदल गया है अनुभागों की अपेक्षा जो क्रम है, जिसको अश्वकरण कहते हैं, तभी मिनिमम हुआ लोभ का। तो इस तरह से उसका नंबर लेना, इन्हें लोभ उल्टा हम क्रम गिन रहे ना, जघन्य की ओर से उत्कृष्ट की ओर से नीचे की ओर जाएंगे, तो पहले क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, जो ऐसे हम हमेशा बोलते हैं वैसा, क्योंकि माया संज्वलन के जघन्य बंध संबंधी स्थान से पीछे अंतर्मूर्त जाकर, पीछे कहो या नीचे कहो, स्थित मान संज्वलन के जघन्य बंध का यहां ग्रहण किया है। अब यहां तो तीनों बनते थे, अब नीचे जाकर अभी ये तो दोनों बंध ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ मान भी बंध रहा है। तो हमने क्या देखा था पहले में, यहाँ लोभ का जघन्य, यहाँ माया का जघन्य और यहाँ पर मान का जघन्य, तीनों बंध रहे हैं। उस जहाँ मान का जघन्य देख रहे हैं बंध, तो वहां मान माया लोभ तीनों का है, फिर आगे चलकर क्रोध का भी बंध वहां देखेंगे। यहां ग्रहण है, यहां भी अनंत गुणे का कारण प्रति समय अनंत गुणी श्रेणी रूप से पीछे अनुभाग बंध की वृद्धि है। हम उल्टा देख रहे हैं ना, इसलिए कहेंगे अनुभाग बंध की वृद्धि कितनी, अनंत गुणा। और सीधे देखेंगे तो अनिवृत्तिकरण का एक एक समय जाता है तो अनुभाग बंध अनंतवा भाग अनंतवा भाग अनंतवा भाग होता है। जैसे हमने सत्ता में जो अनुभाग है वो अनंतवा भाग होने को अनुसमय अपवर्तन घात कहा था, तो यहाँ ये अनुभाग बंध में भी जो घटौती हो रही है, कटौती हो रही है, वो प्रति समय हो रही है। जब अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में घटता है तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे, कांडक घात तो सत्ता वाले को कहते हैं, अनुभाग बंध अपसरण कहेंगे, है ना? जैसे हम स्थिति बंध में देखा था स्थिति बंध अपसरण, पर यहां किसकी बात है, प्रति समय अनंतवा भाग होना। अब आगे क्रोध की बात, क्रोध संज्वलनम अनंत गुणम, उससे क्रोध संज्वलन अनंत गुणा है, क्योंकि उससे पीछे अंतर्मूर्त जाकर स्थित जघन्य बंध का यहां ग्रहण किया है। ये सर्वत्र भी यहां बंध की अपेक्षा लगाएंगे हैं। अब यहां स्थिति तो समान बनेगी, हाँ, अभी अनुभाग देखना पड़ेगा क्योंकि हमने जो लोभ का, हाँ पर एट ए टाइम चारों में कितना अनुभाग है उसकी बात यहाँ नहीं बता रहे, वो यहाँ का विषय नहीं है, वो सूक्ष्म जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में उसका क्षपणासार में उसकी चर्चा होगी। एट एनी गिवन टाइम किसमें कितना अनुभाग है, वहां भी हमने देखा था क्रोध से लोभ में बहुत कम होते हैं अनुभाग, परंतु उसकी ये यहां चर्चा नहीं, अपना विषय अलग है। आप देख सकते वो लब्धिसार में, आप फाइंड आउट करना, वो अश्वकरण वाले प्रकरण में मिलेगा। एक बार अश्वकरण शुरू होता है तो ये क्रम बदली जाता है, तो उसमें कितने कितने स्पर्धक है उनकी संख्याओं की भी वहां चर्चा की थी। अब आगे 123, मणपज्जय नानावर्णीयम दानंतरायम च दो भी तुलनानी अनंत गुणानी, उससे मनपर्य ज्ञानावरणीय और दानांतराय ये दोनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणी हैं। हाँ, ये पांचवें नंबर पर है, उन्होंने तो हर एक प्रकृति को नंबर लगाया है इसलिए उनके 64 हो जाते हैं। उन्होंने एक एक प्रकृतियों को एक एक नंबर दिया है तो 64 हो जाते हैं। अब इसका रीजनिंग बताते कारण, क्योंकि संज्वलन क्रोध का जघन्य अनुभाग बंध बादर कृष्टि स्वरूप है, जब बादर कृष्टि हो जाती है तब यहां इसका भी बंध चल रहा है ना, तो वो बंध जो है सत्ता में जितना अनुभाग है उससे भी हीन बंध होगा। विशुद्धि यहां वहां चलती है ना, विशुद्धि बढ़ रही है, तो संज्वलन क्रोध का जो जघन्य अनुभाग था वो बादर कृष्टि स्वरूप है, परंतु इन दोनों प्रकृतियों का अनुभाग स्पर्धक स्वरूप है। अब ये कृष्टि स्वरूप है और स्पर्धक स्वरूप है, इसका अर्थ क्या है? देखो, संसार अवस्था में जब तक पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक नहीं होते, वो तो अनिवृत्तिकरण में हो जाते ना, अपूर्वकरण अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है। अपूर्व स्पर्धक होते का अर्थ क्या है, अभी तक मिनिमम पॉसिबल कितना भी अनुभाग हो तो उसकी एक लिमिट थी, जिसको हम जघन्य स्पर्धक के वो जघन्य वर्गणा उसका जघन्य वर्ग कहेंगे, उससे नीचे अनुभाग नहीं होता था। अब यहाँ की विशुद्धि अति विशुद्धि है, उसके कारण क्या होता है, उससे भी अनंत गुणा ही नहीं से नए वर्गणा और नए स्पर्धक तैयार होते हैं, तो उसको कहते हैं अपूर्व स्पर्धक। प्रति समय अपूर्व अपूर्व होते रहते हैं, तो ये अपूर्व स्पर्धक की रचना होने के बाद अनुभाग और घटता है। तो पहले तो वर्गणाएं कहते थे, वर्गणाएं किसको कहते और सृष्टि किसको कहते, लगातार जो वर्गणाओं के समूह है ना, तो उसमें एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अनुभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे वर्गणा, और उनके समूह को कहेंगे स्पर्धक। अब यहाँ क्या होता है कि वर्गणाओं में से कुछ परमाणु उसका अनुभाग अत्यंत हीन होता है, अनंत गुणाहीन हो जाता है, और वर्गणा जैसे ही वहां रचनाएं तैयार होती है, परंतु उसको कृष्टि क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि में नीचे से ऊपर कहेंगे हम, तो नीचे मिनिमम पॉसिबल है अनुभाग, उसके ऊपर की दूसरी कृष्टि में अनंत गुणा है, तीसरी कृष्टि में उससे अनंत गुणा, वहां अनंत गुणा है। ऐसी कृष्टियां भी बहुत सारी तैयार होती है, परंतु उसका समूह को हम कृष्टि कहेंगे, तो हम कहेंगे ये बादर कृष्टि हो गई। वहां पर सूक्ष्म कृष्टि में तो उससे भी और अनंत गुणाहीन हो जाएगा, उसकी बात यहां नहीं है, यहां बादर कृष्टि स्वरूप से बंद है ये बात चल रही है, क्योंकि इनका सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में जो जघन्य बंध होता है, किनका, मन परे ज्ञानावरण और दानांतराय, ये पांचों ही ज्ञानावरण और पांचों ही अंतराय बनते हैं। कहां तक बनते मालूम है, कहां तक उसका बंध है, दसवें के अंत तक। यहां भी पढ़ा ना हमने सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, तो उनका जो बंध है वो मिनिमम कहां पर है, दसवें के अंत में। तो दसवें के अंत में ये मन परे ज्ञानावरण और दानांतराय का बंध है, उनके बंध में मिनिमम पॉसिबल वो है, परंतु अभी हमने जो क्रोध संज्वलन को देखा था वो तो कितने नीचे आकर देखा था पूर्व करण में भी, फिर भी उसका अनुभाग बहुत कम है, और उससे वो दूसरा है जो अनंत गुणा ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां जो बंध था वो कृष्टि स्वरूप से था, और वहां जो है वो पूर्व स्पर्धक रूप से, स्पर्धक रूप कहा, यहां उन्होंने अपूर्व स्पर्धकों का नाम नहीं लिया है, परंतु समझने के लिए हमने उसकी चर्चा की। तो वे अभी पूर्व स्पर्धकों से नीचे, उससे भी जघन्य बंध नहीं है उनका, मिनिमम पॉसिबल वहां जो है उतना ही है। इसलिए देखो क्या कहते हैं, इनका यानी मन परे ज्ञानावरण दानांतराय का सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में जो जघन्य बंध होता है, अनुभाग की अपेक्षा जघन्य बंध चल रहा है ना, स्थिति भी यहां जघन्य है, परंतु अभी हम स्थिति की चर्चा नहीं कर रहे, वह स्पर्धक रूप होता है। स्पर्धक रूप होता है का अर्थ समझ में आए, जब संसार अवस्था में जितना कोई स्पर्धक पॉसिबल है मिनिमम भी, वहां अभी एक दो स्पर्धक नहीं होंगे, स्पर्धक भी अनंत होते हैं, फिर भी वो स्पर्धकों से कम नहीं हुआ है अनुभाग, वह कृष्टि स्वरूप नहीं हो सकता, इसलिए संज्वलन क्रोध के जघन्य बंध की अपेक्षा विवक्षित इन दो प्रकृतियों का जघन्य बंध अनंत गुणा है। ये बहुत क्लियर है ना, ऐसे समझाए भी बहुत अच्छी तरह से। अब आगे का ग्रुप देखते हैं, ओही नानावर्णियम ओही दंशनावर्णियम, लाभंत चाहिए, ला के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए। लाभंतरायम च तिन्नी भी तुल्लानी अनंत गुणानी, कहते हैं अवधि ज्ञानावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय और लाभांतराय, ये तीनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर उनसे अनंत गुणी हैं। अब कहेंगे ये भी वहां तक बनती है, कहेंगे ना, क्या कहते, इसका कारण प्रकृति विशेष है, क्योंकि वो पहले वाला कारण नहीं अभी बता सकते, क्योंकि ये भी स्पर्धक रूप से बन रहे और ये भी दसवें गुणस्थान के अंत समय में बन रहे, तो कहेंगे यहां प्रकृति विशेष है। शंका, वह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, क्षपक श्रेणी के भीतर, विश्रेय के ऊपर की मात्रा दिख नहीं रही है वहां पर, हाँ देशघाती बंधकरण विधान में, ये विधान का ध भी अस्पष्ट है, जो यह बतलाया गया है कि कौन सा विधान कहा, देशघाती बंधकरण विधान, कल हमने इसको पढ़ा था, बंद जो हो रहा है प्रकृतियों का, तो उसका सर्वघाती जी के स्थान नहीं बंधेंगे, देशघाती रूप से द्विस्थान रूप बंद होगा ऐसा देखा था। कौन से द्विस्थान हो गए अभी मिनिमम वो, हाँ लता और दारू रूप द्विस्थान रूप बंद होगा, तो उसको कहते देशघातीकरण। पहले तो सर्वघाती रूप से बंद होता था, अब यहां पर आने के बाद, यहां पर यानी अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में आने के बाद उनका देशघाती बंधकरण होता है, उसको देशघातीकरण भी कहेंगे। बंध की अपेक्षा पहले बताया है, सत्ता की अपेक्षा भी देशघातीकरण होता है, इसलिए वो बंध शब्द बीच में डाला है। सत्ता में पड़े हुए भी उनका भी अनुभव घटेगा, परंतु उसकी चर्चा नहीं। बंध में क्रम से विशिष्ट प्रकृतियों का बंध जो है वो द्विस्थानीय देशघाती रूप से होता चला जाता है, उस क्रम में किसको लेना पहले किसको बाद में, उसमें भी ये ग्रुप्स बताए थे, तो वही बताते हैं। क्षपक श्रेणी के भीतर देशघाती बंधकरण विधान में जो यह बतलाया गया है कि जिन प्रकृतियों का अनुभाग बंध पूर्व में देशघाती हो जाता है उनका अनुभाग स्तोक होता है, तथा जिनका अनुभाग बंध पीछे देशघाती होता है उनका अनुभाग बहुत होता है, बहुत है इसलिए उसको घटाने में जरा टाइम लगेगा ज्यादा, उसी से वह जाना जाता है। अब इसी से ये जो पहले हमने मनपरे ज्ञानावरण और दानांतराय लिया, और अभी अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय को लिया, अब इसी क्रम में आगे कहेंगे। सुदनानावरणीयम अचक्षु दंशनावरणीयम भोगंतरायणम च तिन्नीवी तुल्याणी अनंत गुणानी, श्रुत ज्ञानावरणीय अचक्षु दर्शनावरणीय और भोगांतराय, ये तीनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर इनसे अनंत गुणी है, ये भी वहां तक बन रही है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। शंका, वह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसका समाधान, चूंकि इन प्रकृतियों का अनुभाग बंध पीछे देशघातित्व को प्राप्त होता है। देशघाती बंधकरण में पहले हमने जो तीन प्रकृतियां देखी थी, अवधि ज्ञानावरण अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय, उसके पश्चात इनका देशघातीकरण होगा, इसका अर्थ क्या, इनका अनुभाग ज्यादा है। किसकी बात की थी हमने अभी, तीन प्रकृतियां देखी ना, श्रुत ज्ञानावरण और चक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय। देखो पीछे देशघातित्व को प्राप्त होता है, अतः इसी से उसका निश्चय हो जाता है। उसके बाद अभी 126 नंबर, चक्षु दंशनावरणीय अनंत गुणम, उनसे चक्षु दर्शनावरणीय अनंत गुणी है, इसका कारण सुगम है। इसको भी वो देशघातीकरण में हमने देखा था, चक्षु दर्शनावरणीय प्रकृति को सिंगल अलग रखा था, उसको ग्रुप में नहीं लिया था। आभिनिभूय नानावरणीयम परिभोगंतरायम च दोवी तुल्याणी अनंत गुणानी, उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय और परिभोगांतराय ये दोनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणी हैं, यह सूत्र सुगम है। उसको भी हमने उस देशघाती के लिस्ट में देखा था। वीर्यांतरायम अनंत गुणम, उनसे वीर्यांतराय अनंत गुणा है, यह सूत्र भी सुगम है। अब आगे, पुरुष वेदो अनंत गुण, उनसे पुरुष वेद अनंत गुणा है, वीर्यांतराय का अनुभाग देशघाती एक स्थानीय है, ओ इसका तो अनुभाग एक स्थानीय हो जाता है, तथा पुरुष वेद का भी अनुभाग इसी प्रकार का है, परंतु चूंकि अंतर्मूर्त पीछे जाकर के बांधा गया है अतः वह अनंत गुणाहीन है। वीर्यांतराय कहां बंधा था, अंत में, लास्ट में, लास्ट वीर्यांतराय का बंध दसवें के अंत में। पुरुष वेद का बंध कहां हुआ था, नौवे के प्रथम भाग के अंतिम समय में, जहां तक वो सवेद है, वेद का उदय है, तब तक उसका वेद का बंद भी है। उसके बाद भले सत्ता में पड़े रहते हैं और उसका जो नाश क्षय हो जाता है, परंतु वेद का बंद रुक जाता है। हमें बंद की अपेक्षा लेने हैं, तो उसका भी घटते गया था पुरुष वेद का, फिर भी वीर्यांतराय का दसवें के अंत में है और इसका नौवे के प्रथम भाग के अंत में है। तो इसलिए कहते अंतर्मूर्त पहले वो बंधा था, इसलिए वहां अनुभाग ज्यादा है, क्योंकि विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा देखेंगे विशुद्धि वहां कम है दसवें की अपेक्षा से। इसलिए लिखते परंतु वह चूंकि अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा गया है, अतः वह अनंत गुणा हीन कैसे, अनंत गुणा चाहिए, हीन क्यों लिखा? किंतु अंतोमुत्तम हेठा उदरीय बद्धो तेन अनंत गुणहीनो जादो। पीछे जाकर तो कौन सा बांधा है? वीर्यांतराय ने पीछे जाकर कौन सा बांधा है? पीछे ने हम नीचे देख रहे हैं, पुरुष वेद बांधा है। तेना अनंत हीन क्यों हो रहा? अनंत गुणा है, हीन है। हाँ, ये ऊपर भी करेक्शन करना चाहिए। हम ऊपर देखते ना, पहले हमने कहाँ देखा था? अनंत गुणों, अनंत गुणों ऐसा चाहिए। पीछे ने नीचे देखो, यही हम पीछे जाके बांधा है वो दूसरे सूत्र में देखेंगे। जो कहीं पीछे जाकर बांधा था ऐसा जहां आया है ना, 125 में पीछे देशघातित्व की बांधे, पीछे जाके बांधा है वो माया में आया होगा। अंतर्मूर्त उतर कर स्थित माया कषाय के वगैरह वगैरह। उत्तरोत्तर अनंत गुणा की बात चल रही है अपनी, लेकिन क्या 129 सूत्र देखो, 128 में वीर्यांतराय बताया और उससे अनंत गुणा पुरुष वेद बताया। वो हीन शब्द बाय मिस्टेक पड़ गया, वो पेंसिल से करना, वो हीन निकाल देना। अनंत गुणा है ऐसा चाहिए, वो ऊपर और नीचे दोनों जगह। किंतु अंतोमुत्तम हेठा ओदरीय बद्धो तेन अनंत गुण अनंत गुणो जादो चाहिए, ही शब्द निकालना खाली, अनंत गुणो जादो। ये कितनी कापी पर से कापी हुई होगी ना, अनंत गुण, अनंत गुणों, न और ही नहीं चाहिए, अनंत गुणों जादो ऊपर प्राकृत में, अनंत गुणों चाहिए बस, अनंत गुणों जादो। लास्ट नो रखना है तो बीच वाला न और ही निकालना। और यहाँ ही निकाल देना, अनंत गुणा है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। वीर्यांतराय का अनुभाग देशघाती एक स्थानीय है तथा पुरुष वेद का भी अनुभाग इसी प्रकार का है। एरिसो चेव, एरिसो यानी एक देश यानी एक स्थानीय, बराबर ऊपर क्या पुरुष वेद सभी अनुभागो एरिसो चेव, किंतु पर वीर्यांतराय हीन है वो तो अंतिम समय में जाके जघन्य कहा है वो तो बता दिया उन्होंने। नीचे जाकर नहीं नहीं पुरुष अभी यहाँ अगर आप वीर्यांतराय को भी ले लेंगे तो जिस स्थान पर हम पुरुष वेद हाँ वह चूंकि उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसलिए तो वह शब्द तो हिंदी में ऐसा लिखना चाहिए वह चूंकि अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा गया है अतः यह अनंत गुणाहीन है, फिर वह का बदला यह करना पड़ेगा आपको। वीर्यांतराय अनंत गुणाहीन है ना, तो वह पीछे जाकर नहीं बांध रहा है ना। वह शब्द आप एक बार किसके लिए लगाते हैं, वह अंतर्मूर्त पीछे जाकर बांधा है वो किसके लिए आप यूज कर रहे हैं, पुरुष वेद के लिए। हाँ यदि वह शब्द तो एक्सप्लेनेशन में वह और यह ऐसे दो शब्द होने चाहिए था तो ऊपर लगा किंतु अंतोमोत्तम हिट्ठा उदीरे बद्धो तेन अनंत गुणहीनो जादो ऐसा अगर कहते हैं तो यहाँ जो वह और यह दो बार लिया है ना तो वह और यह करना पड़ेगा। अभी उन्होंने वह यह की बात लिखी नहीं है। अभी जो कुछ है हमारे समझ में है ना, क्योंकि दोनों ही एक स्थानीय बनते हैं परंतु पुरुष वेद अंतर्मूर्त पहले बंधा था इसलिए वो अनंत गुणा है और इसीलिए वीर्यांतर अनंत गुणाहीन है ऐसा भी कह सकते हैं। वह और यह ऐसा करो, पहला वह चूंकि है ना वह अनंत गुणाही, हाँ वो अनंत गुणाही है, वो यह वह का डिफरेंस कर ले सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ना पेंसिल से रखो अभी इसको, कुछ अर्थ समझ में आए ना। ये दोनों ही एक स्थानीय है परंतु पुरुष वेद का बंध एक अंतर्मूर्त पहले है और वीर्यांतराय का एक अंतर्मूर्त बाद है, तो वीर्यांतराय अनंत गुणाहीन है और पुरुष वेद अनंत गुणा है। ये यह वह का डिफरेंस समझ लो अभी। क्योंकि मूल पुस्तक में यह वह की बात ही नहीं है। हाँ प्राकृत में तो आप भले वीर्यांतराय को ले लिया आपने, हाँ तो यहाँ वह यह का डिफरेंस करना पड़ेगा। यह है नहीं, यहाँ वीर्यांतराय की बात कर सकते आप। अब आगे बढ़ेंगे 130 नंबर। हस्सम अनंत गुणम अपूव कर्ण चरिम समय सव्वघादि विठाणीय जहन्नाणु बंध जहन्नाणु भाग बंधक गहना दो। उससे हास्य अनंत गुणा है। अभी उसका रीजनिंग क्या है? वो पुरुष वेद कहाँ बंध रहा था? नवे के पहले भाग के अंत तक, है ना, सवेद भाग के अंतिम भाग तक। हास्य कहाँ तक बनता है? आठवें के अंतिम समय तक। कारण कि यहाँ अपूर्वकरण के अंतिम समय संबंधी सर्वघाती द्विस्थानीय जघन्य अनुभाग बंध का ग्रहण किया गया है। ऊपर क्या है? सर्वघाती स्पर्धक है ना, उसमें देशघाती प्रकृति है, सर्वघाती स्पर्धकों का वहां बंध है। रदि अनंत गुण, उससे रति अनंत गुणी है, कारण कि वह हास्य पूर्वक होती है। दुगुंचा अनंत गुणा, उससे जुगुप्सा अनंत गुणी है, यद्यपि रति और जुगुप्सा इन दोनों प्रकृतियों का अपूर्वकरण के अंतिम समय में ही बंध जगन्य बंध होता है, तो भी रति की अपेक्षा जुगुप्सा अनंत गुणी है, क्योंकि प्रकृति विशेष का आश्रय करके संसार अवस्था में सर्वत्र इसी प्रकार की स्थिति है। हम कहां तक नंबर देते आए थे? 14 में। जुगुप्सा तक 14 हो गए। हाँ, भयम अनंत गुणम, उससे भय अनंत गुणा है, इसका कारण प्रकृति विशेष है। क्योंकि भय और जुगुप्सा भी एकत्र वहीं पर बंध की विच्छित्ति होती है एक साथ, हास्य रति भय और जुगुप्सा आठवें के अंतिम समय में। सोगो अनंत गुणों, उससे शोक अनंत गुणा है, कारण यह है कि अपूर्वकरण की विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले प्रमत्त संयत के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया है। शोक के बंध की विच्छित्ति कहाँ पर है? हाँ, छठे के अंत में। छठे के और बंध की विच्छित्ति वाले कौन सी प्रकृतियां हैं? छह है ना। हाँ, कौन कौन से? सब अ वाले, एक है शोक। हाँ, कौन से अ है? अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयश कीर्ति, अरति और शोक। अरदि अनंत गुणा, उससे अरति अनंत गुणी है, क्योंकि वो छठे में दोनों के बंध की विच्छित्ति होती है एक ही समय में, फिर भी वो अनंत गुणी कहेंगे, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। इत्थि वेदो अनंत गुण, उससे स्त्री वेद अनंत गुणा है। अभी यहां स्त्री वेद के बंध की विच्छित्ति कहां है? दूसरे में। स्त्री वेद बांधने वाले जीव कौन से? पहले दूसरे गुणस्थान वाले। तो कारण यह है कि यहां प्रमत्त संयत की विशुद्धि की अपेक्षा अनंत गुणी हीन विशुद्धि युक्त सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधे गए स्त्री वेद के जघन्य अनुभाग का ग्रहण किया गया है। तीव्र अनुभाग की बात नहीं है, तीव्र अनुभाग के लिए वो संकलेश वाला कहेंगे, यहां सर्व विशुद्ध कहा, क्योंकि मिनिमम अनुभाग बांधने वाला है। नपुंसक वेदो अनंत गुणा, उससे नपुंसक वेद अनंत गुणा है। कारण कि संयम के किसका स्त्री वेद का दूसरे में नहीं कहो, पहले और दूसरे में, दूसरे में रुकता है यानी बंदे की विच्छित्ति होती है। दूसरे में नहीं है, पहले और दूसरे दोनों ही बांधते हैं, परंतु विशुद्धि सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि क्यों लिया? सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि यानी कब लेंगे? अभी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के बाद वो अन्य ऊपर के गुणस्थानों में जाने वाला है, दूसरे वाला तो गिरने के सन्मुख है, इसलिए वो स्त्री वेद बांधा है, परंतु उसमें भी जघन्य में जघन्य अनुभाग कब बांध रहा है उसकी बात चल रही, जघन्य अनुभाग कब बांधेगा उसको उसकी बात है। तो मिथ्या दृष्टि वह कब कब तक बांधेगा स्त्री वेद को? हाँ इन्हें करण लब्धि के अंतिम समय तक, नहीं प्रायोगिक लब्धि में हमने बंधापसरण देखे थे, बंधापसरण के कितने स्थान देखे थे? 34, और उसमें 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है बंधापसरण, उसमें ये स्त्री वेद वाला एक है, उसमें से एक वन ऑफ देम। तो वहीं पर प्रायोगिक लब्धि में ही वहाँ क्रम से वो बहुत सारी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, वहां से लेकर ऊपर बंधेगा नहीं, इसलिए वो सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि का वहां तक लेना, उसके बाद नहीं लेना। अब कहते हैं नपुंसक वेदो अनंत गुणों, उससे नपुंसक वेद अनंत गुणा है, कारण कि संयम के अभिमुख हुए सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का ग्रहण किया गया है। ये संयम के अभिमुख है वो, फिर भी उसको भी नपुंसक वेद को भी वहां पर ही लेना, छोड़ देना, कहाँ पर? प्रायोगिक लब्धि में बंधापसरण तक ही लेना उसको, उसके बाद उसका बंध नहीं है। केवल नाना वर्णियम, आप देखना वो पंचलब्धि की पुस्तक में इकट्ठा लिखा है ना, वो सारे 34 स्थान है, उसमें ग्रुप्स है अलग अलग। केवल नाना वर्णियम केवल रंसना वर्णियम च दो भी तुल्लानी अनंत गुणानी, उससे केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय ये दोनों ही प्रकृतियां तुल्य होकर अनंत गुणी है। ये केवल ज्ञानावरण कहां तक बनता है? हाँ, 10वें तक। यद्यपि इन दोनों ही प्रकृतियों का अंतर्मुहूर्त काल तक अनंत गुणी हानि होकर सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग बंद होता है, तो भी सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि के द्वारा बांधे गए नपुसक वेद के जघन्य अनुभाग बंद की अपेक्षा वह अनंत गुणा है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है उन प्रकृतियों में, ऐसा ही तीव्र अनुभाग पाया जाता है। ये बात बतानी। पहला अनंत गुणा, उनसे प्रचला अनंत गुणी है, क्योंकि अब प्रचला का बंध कहां तक है? हाँ, 8वें के पहले समय में, 12वें में उसका उदय है। तो प्रचला अनंत गुणी है क्योंकि वह अपने काल के 7 भागों में से, ये किसकी बात चल रही होगी? अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान के, 8वें गुणस्थान के 7 भाग करेंगे उसमें से पहला भाग, तो अपने काल के 7 भागों में से प्रथम भाग में वर्तमान यानी रहने वाले और अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीव के द्वारा बांधी जाती है। अभी वह के लिए दोनों के लिए लिए, यानी प्रचला और केवल ज्ञान आवरणी के लिए। ये जो अपने काल के सात भागों में से प्रथम भाग में वर्तमान, वो वर क्या लिखा है, अपूर्व करणेन सगद्धाय परम सत्तम भागे बट्टमाणेन चरिम समय सुम सांप्रायस्य विशोहिदो अनंत गुणहीन विशोहिया बद्धत्तादो। नहीं, एक ही बात कर रहे, क्या कर रहे कि कब बांध रहे हैं, तो सात भागों में से प्रथम भाग में जो है वो बांध रहा है, और कैसा बांध रहा है, कितनी विशुद्धि वाला है वो अपूर्व करण वाला, तो कहते हैं अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि, ये पूरा विशुद्धि का विशेषण है। पूर्व में दसवें गुण स्थान के अंत में जितनी विशुद्धि होती है उससे अनंत गुणाहीन विशुद्धि वाले ऐसे अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जो जीव है वो अपूर्वकरण गुणस्थान के सात भागों में से पहले भाग में जो वर्तमान है जीव, वे इसको बांध रहे हैं, ये पूरा ऐसा लेना। पहले तो कहाँ बांध रही है वो बताया, और कितनी विशुद्धि के साथ बांधते हैं वो बताया, जीव के द्वारा बांधी जाती है। और वो पहले वाली जो हमने देखी वो दसवें के अंत समय में बांधी जाती है। 21 हो गए ना, 22। निद्धा अनंत गुणा, निद्धा आता है कि निद्धा आता है, पहले क्या आया है, पहले शब्द आया था बहुत बार ना, कहाँ पर 149 निद्धा निद्धा, अच्छा, और पहले आया था तो हमने अनुभाग में देखा था ना निद्रा वेल, सत्तावन में निद्धा, निद्धा निद्धा निद्दा निद्दा और निद्दा ऐसा ही होना चाहिए वो, और वैसा हम करेंगे इसको, डबल द, हाँ डबल द,
दोनों जगह मुष्टुक आया,
डबल द, कहाँ गया निद्दा निद्दा, निद्दा अनंत गुणा, उससे निद्रा अनंत गुणी है। यद्यपि इसका जघन्य बंध वहीं पर होता है, वहीं पर यानी जहां प्रचला का होता है, प्रचला का कहां होता है, अपूर्वकरण के पहले भाग में होता है, दोनों एक साथ ही बंध की विच्छित्ति है ना, तो यद्यपि जघन्य बंध वहीं पर होता है तो भी प्रकृति विशेष के कारण वह प्रचला से अनंत गुणी है। उत्कृष्ट अनुभागों में भी हमने देखा था निद्रा के अनुभाग से प्रचला का ज्यादा होता है, और जघन्य की ओर भी वही प्रोपोर्शन है उसका। पच्चक खानावरणीय मानो अनंत गुण, मान को लिया यहां पर, उससे प्रत्याख्यानावरणीय मान अनंत गुणा है। अभी हम नीचे की ओर से ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमने उत्कृष्ट में क्या लिया था, पहले लोभ को, फिर माया को, फिर क्रोध को और फिर मान को। अभी जघन्य में ऑर्डर तो वही रहेगी, मान की ओर से हम फिर क्रोध होगा, क्रोध फिर माया फिर लोभ, देखो, क्योंकि अपूर्व करण क्षपक की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले ये प्रत्याख्यानावरणीय मान कब तक बनता है, उदय कहाँ है वहां बंधेगा, हाँ पांचवे तक उदय है ना उसका, तो पांचवे तक बंधेगा, छठे में उसका उदय नहीं, छठे सातवे में, हाँ तो अपूर्व करण क्षपक की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले तथा सर्व विशुद्ध संयसा संयस जीव के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण किया गया है। सर्व विशुद्ध ने अभी पांचवे से सातवें के सन्मुख जो कोई है ऐसा सर्व विशुद्ध कहेंगे हम, तो उसके द्वारा जो बांधा है तभी वो जघन्य अनुभाग को बांधेगा। पांचवे में और किस किस की बंध की विच्छित्ति होती है? हाँ, प्रत्यक्ष अनावरण क्रोध मान माया लोभ चार की होती है। कोधो विशेषाहियो, देखो अभी यहां अनंत गुणा नहीं कहा, विशेष अधिक कहा, उससे प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति विशेष है। माया विशेषाहिया, उससे प्रत्याख्यानावरणीय माया विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति विशेष है। लोभो विशेषाहियो, उससे प्रत्याख्यानावरणीय लोभ विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति विशेष है, क्योंकि ऐसे लोभ में ही ज्यादा अनुभाग होता है, तो उसकी अपेक्षा से ये क्रम पड़ा वहां पर। एक ही समय में बनते हैं। संज्वलन में जो आपने देखा था ना, अलग अलग समयों में, केवल वो क्षपक श्रेणी में नौवे गुणस्थान में। हाँ, पर सामान्य संज्वलन जो बनता है वो तो चारों बनते हैं। चारों का बंध होता है ना, जघन्य की ओर लेना है आपको। आपका ऐसा कहना है जघन्य में जब हमने क्रोध मान माया लोभ को देखा था तो लोभ को सबसे जघन्य रखा था, फिर माया को जघन्य, उससे अनंत गुणा। मान का जघन्य उससे अनंत गुणा, और क्रोध का जघन्य उससे अनंत गुणा है, क्योंकि वहां वो अश्वकरण के बाद क्रम बदली हुआ था। अब नवे गुणस्थान के पहले पहले संसार अवस्था में यह क्रम रहता है। अधिकता से नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो वहां तो हमने जघन्य में जघन्य पहले लोभ को लिखा था। लोभ के जघन्य से माया का जघन्य अनंत गुणा था। अब यहां क्या पोजिशन हो रही है? लोभ को ये लिखा ना, लोभ को अंत में रखा है। तो संसार अवस्था में क्षपक श्रेणी को छोड़ो अभी, तो ये बात रहेगी, यानी वो अश्वकरण वाली क्रिया के पहले पहले तक ये पोजीशन है, यानी सवेद भाग तक कहो तो भी चले, क्योंकि वो अवेद अपगत वेदी हो जाता है ना, उसके बाद वो क्रम बदलता है उसका श्रेणी में। तो यहां हमने जघन्य को अनंत गुणा की अपेक्षा पहले मान, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ, बराबर है नहीं? वहां जघन्य में उसको पहला नंबर दिया था, संज्वलन लोभ को, क्योंकि वो तो नवे गुणस्थान के वो क्षपक श्रेणी की बात चल रही थी। इसका कारण प्रकृति विशेष, ये हो गया। 145 अपचखानावरणीयम मानो अनंत गुण, ये प्रत्याख्यान के चार हो गए। अभी उसके बाद उससे अप्रत्याख्यानावरणीय मान अनंत गुणा है। हर जगह मान, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ, क्योंकि संयता संयत की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले सर्व विशुद्ध असंयत सम्यक दृष्टि जीव, ये भी सर्व विशुद्ध असंयत लिया, उसके द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहाँ ग्रहण है। ये द्वारा दिख रहे हैं, द्वारा, इतना छोटा अक्षर है ना, उसमें समझ में नहीं आता। ये 27 हो गए ना पॉइंट अपने, अभी 28 नंबर का पढ़ेंगे ऊपर। ये सूत्र नंबर 146, 145 दो बार हुआ है वहां पर, 146 नंबर देना। उससे ये कोधो विशेष आयो, उससे अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। माया विशेष आया, उससे अप्रत्याख्यानावरणीय माया विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। लोभो विशेष आयो, उससे अप्रत्याख्यानावरणीय लोभ विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। ये विशेष अधिक लिए, अप्रत्यक्ष अनावरण चारों लिए तो विशेष अधिक के क्रम से। अब दूसरी प्रकृति की तरफ जाएंगे। निद्दा निद्दा, वो निद्दा करना दो बार, अनंत गुणा, उससे निद्रा निद्रा अनंत गुणी है, क्योंकि वह असंयत सम्यक दृष्टि की विशुद्धि से अनंत गुणी हीन विशुद्धि वाले सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधी जाती है। निद्रा निद्रा के बंध की विच्छित्ति कहां पर होती है? हाँ, दूसरे में। फिर भी दूसरे की अपेक्षा ये विशुद्ध मिथ्या दृष्टि लिया, वो जगन्य बंध करने वाला है, इसलिए उसको लिया। सर्व विशुद्ध में वो हम समझ सकते हैं कि वो तो पहले से सातवें में जाने वाला है, ऐसा भी लेंगे, उसमें वहां ले सकते उसको। ये सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधी जाती है। देव मिथ्या दृष्टि ले सकते कि इसमें नहीं ले सकते? मिथ्या दृष्टि, सातवें में जाने वाला तो नहीं हो सकता। चौथे गुणस्थान सातवें में जाने में मनुष्य होगा, सर्व विशुद्ध जगन्य में जगन्य बांधने वाले की बात है। और वहां बंद होता है, उदय नहीं है उनके। मैंने बोला उसके साथ कोई कंफ्यूजन करेगा तो अच्छा है। तो वो तो याद ही नहीं आए। हाँ, देव में तीनों की उदय नहीं होता उनके। कौन से तीन? स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। मैंने बोला ना, इसलिए यहीं पर सो लो जितना सोना है, क्योंकि सुख मानते हैं ना, स्वर्गों में वो सोने का सुख नहीं मिलेगा। उससे प्रचला, हाँ ये ऊपर पहला पहला अनंत गुणा, उससे प्रचला प्रचला अनंत गुणी है। यद्यपि इन दोनों ही प्रकृतियों के जगन्य अनुभाग बंध का एक ही स्वामी है। कौन सा? अभी बताए ना, सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। तो भी प्रकृति विशेष होने से प्रचला प्रचला निद्रा निद्रा की अपेक्षा अनंत गुणी है। अब कहते थीण गिद्धि अनंत गुणा, उससे स्त्यान वृद्धि अनंत गुणी है। इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। हम भी ऐसे भी देखते हैं ना, निद्रा भी उससे, उसके उदय में होने वाले नींद भी और ज्यादा ज्यादा है। 152 नंबर, अनंतानुबंधी मानो अनंत गुणों, उससे अनंतानुबंधी मान अनंत गुणा है, क्योंकि संयम के अभिमुख हुए ये मिथ्या दृष्टि बांधेगा। संयम का अभिमुख हुआ इन्हें अभी, पहले से कहाँ जाएगा? सातवें में। तो कौन से पॉइंट तक बांधेगा? कौन सा? करण में बोलो, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय। अभी प्रायोगलब्धि को मत याद करो। हाँ, अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय, क्योंकि 34 जो बंधापसरण के स्थान देखे थे उसमें अनंतानुबंधी का नंबर नहीं था। मिथ्यात्व का भी बंध और अनंतानुबंधी का भी बंध करण लब्धि के अंतिम समय तक होता है। अन्य जो प्रकृतियां हैं ना, ये कौन सी, घाती अघाती की, कुछ अघाती की, पुण्य पाप की, उसमें जो वेरिएशन होता है उसमें पाप प्रकृतियों का कितने का ही बंध रुक जाता है। जैसे चार आयु भी चारों नहीं बांधेगी, वो तो उपशम संयुक्त होने तक, संयुक्त होने के बाद आयु फिर बंधनी शुरू हो जाएगी। तो अन्य जो है, नरक गति नहीं बंधेगी, तिर्यंश गति नहीं बंधेगी, ऐसे वो सारे स्थान जो है 34। तो यहाँ क्या कहते हैं, अभी अनंतानुबंधी, क्योंकि संयम के अभिमुख हुए अंतिम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा। पहले जब बात की थी तो सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव इतना ही लिया था। अभी यहाँ अंतिम समय लिख दिया उन्होंने, बांधे गए जघन्य अनुभाग बंध का यहाँ ग्रहण किया गया है। अभी कितना नंबर आया? 35। हाँ, क्रोधो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी क्रोध विशेष अधिक है। पहले किसको लिया? मान को, अब क्रोध को ले रहे, उल्टा जा रहे ना। इसका कारण प्रकृति विशेषता है। माया विशेषाया, उससे अनंतानुबंधी माया विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। लोभो विशेषायो, उससे अनंतानुबंधी लोभ विशेष अधिक है। इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। उससे मिथ्यात्व अनंत गुणा है। या अपना प्रेण, हाँ, क्योंकि ऊपर पढ़ा कि नहीं, मिच्छत्तम अनंत गुणम, ऊपर पढ़ना रह गया था ना। उससे मिथ्यात्व अनंत गुणा है क्योंकि संयम के अभिमुख हुए, अभिमुख है ना सन्मुख, वह अपने काल के अंतिम समय में स्थित सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि, अपना काल है ना मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का अंतिम समय, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधे गए जघन्य अनुभाग का यहां ग्रहण किया गया है। शंका, जबकि इन दोनों ही प्रकृतियों का एक ही मिथ्या दृष्टि जीव स्वामी है, कौन से? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों। तब अनंतानुबंधी लोभ की अपेक्षा मिथ्यात्व का अनंत गुणा होना कैसे उचित है? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रकृति विशेष होने से उसमें कोई विरोध नहीं आता। औरालीय शरीरम अनंत गुणम, उससे औदारिक शरीर अनंत गुणा है। चूंकि यह प्रशस्त प्रकृति है, अभी अनंतानुमंदी मिथ्या तो वगैरह सारे हम अप्रशस्तों को देख रहे थे, है ना। अब कहते हैं चूंकि यह प्रशस्त प्रकृति है, अभी तक सारे कौन कौन से लिए वो सारे अप्रशस्त ही थे ना, ये नानावर्णीय दशनावर्णीय वो सारे, हाँ अभी तक तो हमने अप्रशस्त को ही देखा था। हाँ, सभी कषाय हो गए, मिथ्या तो हो गया, ज्ञानावरण हो गया, अंतराय हो गए, दर्शनावरणी हो गए, सब हो गए ना। चूंकि यह प्रशस्त प्रकृति है इसलिए इसका संक्लेश से जघन्य बंध होता है। अब तक हम क्या देख रहे थे? अप्रशस्त प्रकृतियों के जघन्य बंध कब होगा? जहां विशुद्धि ज्यादा है। नहीं समझे? जैसे मिथ्यात्व जो है वो अप्रशस्त प्रकृति है, तो जितना विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्यात्व का जघन्य बंध करेगा, इस तरह से लेना। मिथ्या दृष्टि में ही संक्लेश वाले और विशुद्धि वाले है ना, तो जो विशुद्धि वाले हैं वो मिथ्यात्व का जघन्य बंध करेंगे, अनुभाग बंध की बात चल रही है। और जो तीव्र संक्लेश वाले मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्यात्व का तीव्र अनुभाग बंध करेंगे। स्थिति जैसे हम हमेशा स्थिति में सत्तर कोड़ा कोड़ी इतने हमको याद है, परंतु उसके साथ साथ ये तीव्रता भी उसमें बनती है ज्यादा। लंबी स्थिति वाला तीव्र मिथ्या तो बांधने वाला है ना, इसलिए वो पंचलब्धि के प्रकरण में कहा था जो सत्तर कोड़ा कोड़ी या तत्सम प्रकृति, इतनी लंबी स्थिति वाले जो बांधने वाले मिथ्या दृष्टि है तो उसको वो प्रथम उपशम सम्यक तो नहीं होता, यानी उस काल में नहीं होगा। क्योंकि इतना बंध होता है ना, वो कितना तीव्र संक्लेश वाला है। ऐसे तीव्र संक्लेश वाला तत्वों की बात सुनेगा क्यों, ग्रहण क्यों करेगा, धारण क्यों करेगा, विचार क्यों करेगा? क्योंकि विचार करता है उसका तो तीव्र संक्लेश रहता है ना, उसके तो मंद हो जाते, विशुद्धि होती है उसके। तत्व विचार के काल में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, तो उस समय उसको इतना ज्यादा बंध कहाँ रहता है? उसका बंध अंत कोड़ा कोड़ी की तरफ आता है या अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है, प्रागलभ्य में आता है ना वो, तो केवल उसका स्थिति ही घटती है ऐसा नहीं है, उसका अनुभाग भी नया बंद हो रहा है, वो भी जगन्य की ओर बढ़ रहा है, कम हो रहा है अनुभाग बंद भी। देखो यह प्रशस्त प्रकृति, इसलिए इसका संकलेश से जघन्य बंध होता है और विशुद्धि से और अनुभाग बढ़ेगा ना उसका. प्रशस्त प्रकृति में विशुद्धि से अनुभाग ज्यादा होगा और संकलेश से उसमें अनुभाग कम होगा तो जघन्य होगा. मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अभी अभी हमने स्थिति के बारे में ये पढ़ा था, जहां मंद कषाय होते हैं वहां स्थिति कम बनती है कि अधिक बनती है? कम बनती है. किस में? शुभ में कि अशुभ में? दोनों में. मंद कषाय से स्थिति दोनों में कम बनती है. हाँ, और अनुभाग? हाँ, मंद कषाय में प्रशस्त में ज्यादा बंधेगा. वहां तो स्थिति की अकेले की बात की, उसके लिए एक्सेप्शन दिया था आयु कर्म का. आयु कर्म तीन प्रशस्त है. कौन सी? देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु, तीनों प्रशस्त है. जितने मंद कषाय आयु लंबी बंधेगी और तीव्र कषाय आयु छोटी बंधेगी. अब पढ़ना उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में. अन्य प्रकृतियों में तो एक रूल बताया, जहां मंद कषाय है वहां स्थिति कम अनुभाग ज्यादा, विशुद्ध यानी शुभ प्रकृतियों की बात है. परंतु आयु तीन शुभ होते हुए भी मंद परिणाम अधिक मंदता है तो लंबी आयु बनता है. देखो प्रशस्त प्रकृति, इसलिए इसका संकलेश से जघन्य बंध होता है. यद्यपि यह प्रकृति मिथ्या दृष्टि संबंधी उत्कृष्ट संकलेश से बांधी गई है तो भी वह मिथ्यात्व की अपेक्षा अनंत गुणी है, क्योंकि संकलेश से शुभ प्रकृतियों के महान अनुभाग का क्षय नहीं होता. क्या कहते? देखो ये जो औदारिक कोई भी शरीर नाम कर्म जो है वो प्रशस्त प्रकृति है. अब कहते जहां संकलेश ज्यादा है वहां अनुभाग कम यानी जघन्य बनता है. ज्यादा संकलेश है तो अनुभाग कम है, परंतु वहां हमने पहले मिथ्यात्व की जघन्य की बात की थी. तो मिथ्यात्व की जघन्य से इसका अनुभाग अनंत गुणा कहते हैं. जघन्य भी क्यों ना हो, वो तो अनुभाग अनंत गुणा ऐसा कहते हैं. तो उसके लिए कारण क्या कहते हैं? मिथ्यात्व की अपेक्षा अनंत गुणी, क्योंकि संकलेश से शुभ प्रकृतियों के महान अनुभाग का क्षय नहीं होता. यानी विशिष्ट प्रकृतियों का अनुभाग जो ज्यादा है वो तो ज्यादा ही रहेगा, उसका उसमें कुछ कटौती नहीं होगी. वेयुव शरीरम अनंत गुणम, उससे वैक्रियक शरीर अनंत गुणा है. वैक्रियक शरीर किसको होता है? मैं भी आप क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ के वैक्रियक शरीर की बात मैं पूछ रही हूँ. नहीं नहीं समझे आप? हाँ, मम्मी ने बात की कुछ. वैक्रियक को बांधने वाले कौन है? देवनार की तो यहाँ बंध की, और यहाँ यहाँ बंध की बात चल रही है और वैक्रियक शरीर की बात है ही नहीं है. शरीर नाम कर्म की बात चल रही है. शरीर नाम कर्म की बात चल रही है. हाँ, देव देव जो है, देव और नार की, वो वैक्रियक शरीर नाम कर्म को बांध ही नहीं सकते. वो आपस में उनका देव को नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, वैक्रियक शरीर, इसका बंध नहीं होगा. और नारकी उनको भी देवगति संबंधी, उसका बंध ही नहीं होगा. उनको आना पड़ेगा मनुष्य तिरेंचों में, दोनों को ही. तो कहते वैक्रियक शरीर अनंत गुणा है, क्योंकि औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रियक शरीर अतिशय प्रशस्त है. शरीर यानी शरीर नाम कर्म. ये हम भूल जाते हैं ना, हम शरीर पर घटाते हैं. अब 41 नंबर. तिरिक्खाउम आउ अनंत गुणम, उससे तिर्यगायु अनंत गुणी है. ये तिर्यगायु भी अभी प्रशस्त प्रकृति चल रही है. अभी तीनों ही आयु जो है वो प्रशस्त प्रकृतियां हैं. क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश और विशुद्धि के द्वारा आयु का बंधन नहीं होता। अतएव तत्प्रायोगे, तत्प्रायोगे का अर्थ होता है आयु के बंधने के योग्य, उसके लिए योग्य, इसको कहते हैं तत्प्रायोग्य। संकलेश व विशुद्धि के द्वारा बांधी गई तिर्यंच अपर्याप्त की जघन्य आयु का यहां ग्रहण किया है। हमको जघन्य चाहिए ना, जघन्य अनुभाग की बात चल रही, उत्कृष्ट अनुभाग की बात हमने पहले देखी थी। कहते हैं उससे भी मनुष्यायुम अनंत गुणम, उससे मनुष्यायु अनंत गुणी है, क्योंकि वह तिर्यंच आयु की अपेक्षा अतिशय विशुद्ध है। ऐसा लिखा नहीं है, जगह नहीं ले सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, 161 तेजय शरीरम अनंत गुणम, उससे तेजस शरीर अनंत गुणा है। चूंकि तेजस शरीर शुभ प्रकृति है, शुभ प्रकृति है ना। अब मेरा प्रश्न है, तेजस शरीर नाम कर्म की बंध विच्छित्ति कहाँ है? अब बराबर है, हाँ बराबर है। उदय की विच्छित्ति वहां आपको याद है 13वें में है, बंध की विच्छित्ति 8वें में है, परंतु 8वें में अभी ये प्रशस्त प्रकृति है, तो 8वें में जो बंध होगा वो उत्कृष्ट होगा, हमको जघन्य चाहिए, तो कहाँ होगा? मिथ्यात्व में, और वो भी अधिक संकलेश वाले को। जघन्य बंध की बात करें ना, जघन्य अनुभाग की बात करें, देखो क्या कहते हैं, चूंकि तेजस शरीर शुभ प्रकृति है, अतएव इसका जघन्य बंध, जघन्य बंध ने जघन्य अनुभाग बंध सर्व संक्लिष्ट मिथ्यादृष्टि जीव के होता है। मिथ्यादृष्टि के होता हुआ भी वह मनुष्यायु की अपेक्षा अनंत गुणा है, क्योंकि शुभ प्रकृतियों के बहुत अनुभाग बंध का अपसरण नहीं होता, यानी जितनी शुभ ज्यादा है प्रकृतियां तो इतना घटता नहीं है वो, भले संक्लेश परिणाम भी क्यों है, उस प्रकृतियों में अपना विशिष्ट जो कोई रेंज है वो तो बदलेगी नहीं, तो उसका जघन्य भी अनुभाग मनुष्यायु से अनंत गुणा है। कम्मय शरीरम अनंत गुणम, उससे कार्मण शरीर अनंत गुणा है। यहां भी नाम कर्म की बात है और शरीर नाम कर्म की, इसका कारण प्रकृति की विशेषता है। तिरिक्ख गति अनंत गुणा, उससे तिर्यंच गति या तिर्यक गति अनंत गुणी है, कारण कि ये तिर्यंच गति शुभ प्रकृति है कि अशुभ है? हाँ शुभ प्रशस्त है, आप क्या कहते हैं? तिर्यंच गति और नरक गति और उसके गत्यानुपरी वो अशुभ प्रकृतियां, अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, कारण कि वह सर्व विशुद्ध सातवी पृथ्वी के मिथ्यादृष्टि नारकी जीव के द्वारा बांधी गई है। हाँ, वो सर्व विशुद्ध लेना है, क्योंकि मिथ्यात्व में से वो सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में चला गया है, और वो तो नियम से तिर्यंच गति बांधेगा, संगी पंचेंद्रिय की बांधेगा ना वो, उससे नरक गति अनंत गुणी है। ये 40 नंबर आ गया यहाँ पर, निरय गति अनंत गुणा ऊपर का रह गया था। अब 165 नंबर का सूत्र, उसके पहले एक स्पष्टीकरण की लाइन है देखो, क्योंकि किसकी बात चल रही है, नरक गति की, नरक गति के भी जघन्य अनुभाग की बात चल रही है। जघन्य अनुभाग की बात है, वहां भी कौन सी लिए थी, तिर्यंच का जघन्य अनुभाग की बात की थी, और वहां विशुद्ध मिथ्या दृष्टि लिया था। अब यहां क्या कहते हैं, नरक गति अनंत गुणी है, क्योंकि वह असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच गति के संक्लेश की अपेक्षा अनंत गुणे संक्लेश के द्वारा बांधी गई है। नरक गति अनंत गुणी है, मिनिमम अनुभाग जघन्य अनुभाग, क्या कहते आप, विशुद्धि में आपका कहना है जो चार गति के जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो उपशम सम्यक तो अभी प्राप्त करने जा रहे हैं या कोई सम्यक तो, करण लब्धि के अंतिम समय में है, तो उनकी विशुद्धि में फर्क है कि नहीं, ऐसा आपका कहना है। तो हमने देखा था ना, ये तो विशुद्धि के भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं अपने अपने, तो उसमें भी तिर्यंच के योग्य विशुद्धि अलग देखी थी हमने, मनुष्यों के योग्य अलग देखी थी, आपको याद होगा तो। यानी तिर्यंचों में मिनिमम से कोई मैक्सिमम स्थान हो सकते हैं, मनुष्यों में हो सकते हैं, उसकी भी अलग अलग उसके वेरिएशन है, वो अपना यहाँ का विषय नहीं है विशुद्धि का। यहाँ तो बंधन में बंधने वाले प्रकृतियों में अनुभाग की बात चल रही है, और जहाँ विशुद्धि की बात आती है क्यों ऐसा है, उसके उतना ही विशुद्धि का यहाँ संबंध ले लिया, बाकी विशुद्धि विशुद्धि से कंपेयर नहीं कर रहे हम। किसकी बात, नरक गति का जघन्य अनुभाग बंधने वाले, हाँ, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच गति के संक्लेश की अपेक्षा अनंत गुणे संक्लेश के द्वारा बांधी गई है। ज्यादा संक्लेश से बांधी है, तिर्यंच गति के ऐसा नहीं है वो, ऐसा हो सकता है नरक गति, तिर्यंच गति जो बांध रहे हैं ना, तिर्यंच गति बांधने में वो यहाँ असंगी लिया, वो केंद्र भी नहीं लिया, वो नहीं बात चल रही है। आप स्थिति की बात देख रहे हैं, आयु की बात नहीं कर रहे हैं, नरक गति की, अप्रशस्त प्रकृति है, हाँ, तीव्र संक्लेश में तो तीव्र अनुभाग ज्यादा होगा, हाँ, यानी तीव्र अनुभाग की अपेक्षा बांधी जाती है, इतना हम कह सकते हैं। तिर्यंच गति जो बांधता है उससे नरक गति बांधने वाले के परिणाम ज्यादा संक्लेश है ना, इस तरह से उसको ले सकते हैं। ये बात बताना चाहते हैं। यानी तिर्यंच गति के बंध में जो संकलेश है उससे नरक गति का बंध करने वाले के संकलेश ज्यादा है। जिस संकलेश परिणाम से बंध होगा उससे नरक गति बांधने वाले के संकलेश परिणाम ज्यादा है, ये बात। नहीं, कोई भी बांधेगा। हाँ, वो स्वयं संघी पंचेंद्रिय उसकी बात नहीं है, नरक गति बांधने वाले को जगन्य कौन बांधेगा उसकी अपेक्षा से। अनंत गुणी संकलेश के द्वारा बांधी गई है, ये नरक गति की बात चल रही है। ऐसा भी ले सकते हैं हम, तिरंच गति बांधने वाले के परिणामों से वही लें, जो नरक गति बांधता है उसके संकलेश ज्यादा है। तिर्यंच गति बांधता है हाँ, तो उसके संकलेश कम है, ऐसे लेना ना। हाँ, वेरिएशन तो है ना, हमको इधर मिनिमम अनुभाग बांधने वाले की बात चल रही है। तीव्र अनुभाग बांधने वाले की यहाँ बात नहीं हो रही है, मिनिमम पॉसिबल अनुभाग बांधने की बात चल रही है। तिर्यंच गति को बांधने वाले जो परिणाम है उससे नरक गति को बांधने वाले के परिणाम क्या हो गए, ज्यादा संकलेश हो गए, इसलिए वो नरक गति जो प्रकृति है वो अधिक अनुभाग वाली, इतना ही यहाँ सिद्ध करना है। अब मनुष्य गति अनंत गुणा, उससे मनुष्य गति अनंत गुणी है। कितने नंबर तक आ गए, ये 47वां। यद्यपि इसका एकेंद्रियों में जघन्य बंध होता है तो भी यह नरक गति की अपेक्षा अनंत गुणी है, क्योंकि वह शुभ प्रकृति है। देखो क्या कहते हैं, मनुष्य गति को बांधने वाले है ना, कौन बांध सकता है, एकेंद्रिय भी बांध सकते हैं ना, तो इसका एकेंद्रियों में जघन्य बंध होता है, यह अनुभाग की अपेक्षा की बात चल रही है। एकेंद्रिय भी कितने आयु तो हमने देखी थी, पूर्व कोटि की भी बांध सकते हैं, यह गति की बात चल रही है, क्योंकि वहां उनके परिणाम ज्यादा विशुद्धि भी नहीं, ज्यादा संकलेश भी नहीं है ना, अति तीव्र नहीं है उनके, जितने हमने देखा था परिणामों में जो पंचेंद्रियों में जो ज्यादा हो जाएगी, फिर भी नरक गति में जितना अनुभाग है उससे मनुष्य गति का अनुभाग अनंत गुना है। यानी वो बंद करने वाले कौन है, एकेंद्रिय। ऊपर भी ऐसा ही लेना था, नरक गति का बंद करने वाले असंगी भी हो सकते हैं, फिर भी नरक गति इटसेल्फ वो तीव्र संकलेश से बनती है, ये वहां लेना था। तो यहाँ एकेंद्रियों में जघन्य बंध होता है, मनुष्य गति का जघन्य बंध एकेंद्रिय भी कर सके, एकेंद्रियों में होता है, अन्य जो बांधेंगे उसके, क्योंकि वहां उसका अनुभाग बंध अधिक होगा, फिर भी नरक गति का जो बंध करने वाले है, नरक गति का जो अनुभाग है उससे ये ज्यादा है, ये शुभ प्रकृति है और नरक गति अशुभ प्रकृति थी। उससे हाँ आगे देवगति अनंत गुणा, उससे देवगति अनंत गुणी है। यद्यपि इसका जघन्य बंध, वो घ दिख रहा है का ध है, अच्छा कल करेंगे इसको, देवगति के जगन्य बंध को इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो लो। अश्विन भाई